رسول پاک کی دکھیا
رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ تم اپنی محفل کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی کلینک. آج ہم اپنے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج کا ہمارا موضوع کافی اہم ہے. جی ہاں ناظرین، میرا موضوع ہے سلیپ، یعنی کہ نیند. آج کا ہمارا موضوع اہمیت کا حامل ہے. مدنی چینل کے ناظرین، نیند وہ اہم حصہ ہے ہماری زندگی کا کہ اگر یہ پوری نہ ہو، اگر اس میں ڈس آرڈر رہے تو ہمارے زندگی کے باقی معاملات، دیگر معاملات بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں. اگر رات کی نیند پراپر نہ ہو یا دن کے کسی حصے کا جو ڈیوریشن ہے نیند کا بیسیکلی، اگر وہ پورا نہ ہو تو دن بھر ہمارا کافی آزمائش میں گزرتا ہے. مطلب فیلنگز ہماری جو ہیں وہ ایک عجیب رہتی ہیں، سر میں درد رہتا ہے. نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ہم اپنے کاموں پہ توجہ نہیں دے پاتے. نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ہمارا ذہن جس معیار پہ کام کرنا چاہیے، جس معیار پہ سوچنا چاہیے، اس معیار پہ اپنی کارکردگی پیش نہیں کرتا. تو اپنے ڈاکٹرز کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ عزوجل اس موضوع پر کوشش کریں گے کہ کافی ہینڈسم قسم کا ڈسکشن ہو تاکہ ہم اپنے ناظرین تک بہترین معلومات پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں. اور ایک اچھی نیت کر لیتے ہیں کہ ایک اچھی نیند اگر ہوگی تو ہمارا جسم بھی صحت مند ہوگا، ذہن بھی صحت مند ہوگا. اور اس نیت کے ساتھ اگر ہم سوئیں گے کہ اگر ہم اپنی نیند پوری کریں گے تو اچھی صحت ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات پر قوت حاصل کریں گے، تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں اس نیند کا بھی ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ اپنے موضوع کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے ڈاکٹر صاحبان کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ڈاکٹر صاحب، موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے اور نیند سب سے بڑا مسئلہ. تو کیا فرماتے ہیں، نیند ہماری زندگی میں کتنی امپورٹنس ہوتی ہے؟
شاکر، جیسے یہ جو سلسلہ ہے ہمارا نیند کے حوالے سے، اس کی اگر ہم شروع میں سمجھ لیں، یہ اویئرنیس سے ریلیٹڈ سلسلہ ہے. اس میں معلومات اہم دی جائے گی اور جو علامتیں بتائی جائیں گی، ممکن ہے کہ ہم علامتیں مل بھی رہی ہوں گی، تو ضروری نہیں ہر ایک کو یہ نیند کا مسئلہ ہو. لیکن نیند کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، سسٹم باڈی کے اندر بنا ہوا ہے کہ انسان کو جب نیند آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ صرف سو جاتا ہے. دماغ مینٹلی بھی، دماغ ایکٹیو بھی ہوتا ہے اور باڈی بھی ایکٹیو ہوتی ہے. دماغ کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہوتی ہیں. اگر بندہ نہ سوئے، مستقل جاگتا رہے تو اس کے بھی نقصانات، زیادہ سوتا رہے تو اس کے بھی نقصانات. یہ خاص ایج ریلیٹڈ، ایج کے ساتھ، جیسے ینگ بچہ ہے تو اس کو 15 سے 16 گھنٹے کی نیند، نیو بورن ہے ایک سال کا، پھر جیسے جیسے ایج بڑھتی
رہتی ہے اس حساب سے نیند
کم ہوتا رہتا ہے. ابھی جو اڈلٹ ایج ہوگی، یعنی 30 سے 40 سال، یہ 6 سے 7 گھنٹے اس کی نیند ہوتی ہے. اب زیادہ ایج آگے جائے گی تو یہ نیند جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اب یہ نیند سونے کا جو وقت ہے نا، یہ ہے امپورٹنٹ، رات میں سونے کا وقت.
ٹھیک ہے،
ابھی قدرت کا نظام بنا ہوا ہے
بالکل.
اور جیسے عشاء کی نماز ہوتی ہے، کچھ دنوں پہلے امیر علیہ سنت کا مدنی پھول بھی تھا مدنی مذاکرے میں کہ عشاء کے بعد 2 گھنٹے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد آپ سونے کی ترکیب،
یعنی اگر 8 بجے عشاء ہے تو 10 بجے تقریباً آپ سو جائیں، 9 بجے ہے تو میکسیمم 11 بجے تک آپ سو جائیں.
اب یہ ہمارا جیسے سسٹم بھی اسی طرح بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں سرکیڈین ریدم بھی بولتے ہیں، سلیپ ویک سائیکل بھی بولتے ہیں.
ٹھیک ہے،
اب جیسے اب صبح روشنی ہوئی اور دن بھر روشنی ہے،
ٹھیک ہے،
اور مغرب کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہوئی، مغرب کا وقت ہوا تو روشنی ختم
ختم ہو گئی.
تو انسان کے جسم میں سینسر بھی موجود ہے،
ٹھیک،
جیسے ہماری آنکھیں، آنکھوں کے اندر جو پردہ ہے ریٹینا جس کو بولتے ہیں، اس کے اندر ریسپٹر ہوتے ہیں، سینسر ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے.
جب لائٹ سورج کی جانا بند ہو جاتی ہے تو دماغ کے اندر وہ کچھ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے،
وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں ایک خاص ایریا کو جو سلیپ کا ایریا ہوتا ہے کہ اب اندھیرا ہونا شروع ہو گیا ہے،
اب آپ نیند کی طرف بڑھ رہے ہیں.
نہیں، وہ کیمیکل دماغ میں ریزڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے، مطلب ریز ہونا سٹارٹ.
جب وہ بڑھ جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی دماغ سکون کی طرف جانے لگتا ہے،
ٹھیک ہے، اور نیند تاری ہونا شروع،
اور یہ نیند کی کیفیت آ جاتی ہے اور پھر بندہ سونے کی طرف چل جاتا ہے. سیم جب روشنی آنے کا وقت قریب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کیمیکل جو ہے آپ کا کم ہو رہا ہوتا ہے، بندہ اٹھنے کی طرف آنے لگتا ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بات سے یہ سمجھا جائے کہ نیند کے لیے بھرپور اندھیرا ہونا بھی لازمی ہے. پھر
ابھی یہ تو میں نارمل فیزیولوجی بتا رہا ہوں جو کہ نیچرل ہے،
نیچرل ہے،
جس طرح باڈی ریسپونڈ کرتی ہے،
ٹھیک ہے.
ایک نیند کا سمجھ لیں کہ فیزیولوجی یہ سمجھ لیں،
ٹھیک ہے،
کہ یہ نیند نارملی اسی طرح ہوتی ہے،
اسی طرح.
اب اس میں آپ جو چیزیں ڈسٹرب کرتے چلے جائیں گے،
ٹھیک ہے،
وہ چیزیں آپ کو پھر وہ نیند کی کوالٹی اور نیند کا جو
فرق آتا رہے
وہ خراب کرتی چلی جائے گی،
ٹھیک ہے.
آپ نے فرمایا ہے نیند کے حوالے سے کافی اچھی ڈیٹیل میں آپ نے بات کی ہے اس کے اندر، کہ اس سے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ نیند ہماری باڈی کے لیے ضروری کیوں ہے. ایک نیچرل پروسیس ہے جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ یہ جس طرح ہماری باڈی کے لیے کھانا پینا سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں، تو آپ کے نیند بھی آپ کو آپ کے دماغ کے لیے بیسیکلی، کیونکہ آپ کے دماغ کو بیسیکلی ریسٹ دیتی ہے. جب آپ ریسٹنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے، قدرت کی طرف سے دیکھیں کتنا بہترین نظام ہے کہ جب آپ ریسٹنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں، نیند کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو آپ کا دماغ عام روٹین سے زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے.
نیند میں بھی بندے کا دماغ چلتا ہے،
ایکٹیولی کام کرتا ہے،
ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ،
ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہے،
ٹھیک
ہے، بہت ایکٹیولی کام کرتا ہے.
نیند کی کوئی قسم ہے جو آپ نے کہا ریپڈ آئی موومنٹ؟
نہیں، وہ ہیں دو ویرائٹی ہیں.
اچھا، دو اقسام ہیں،
مطلب اس کے اندر چینجز ہیں،
ٹھیک ہے.
اب اس میں ڈاکٹر صاحب نے جو چیز بولی نا بڑی اچھی بولی، اس میں جسے ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے ہیں، ہم جیسے دن بھر جو کام کرتے ہیں، جو کچھ سیکھتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں تو وہ ہماری میموری میں جا کے سٹور ہوتا ہے،
ٹھیک ہے.
اس کو بولتے ہیں میموری کنسولیڈیشن.
اوکے،
اب جیسے آج میں نے کوئی کام سیکھا، کوئی کام کیا، جب میں سوؤں گا تو وہ جو ریفلیکس بنے ہوئے ہوتے ہیں، نیورون کے کنیکشنز ہوتے ہیں، وہ پھر کنسولیڈیٹ کرتا ہے.
انٹرسٹنگ پروسیس ہے، جس طرح سے کمپیوٹر کے اندر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اسی وقت ڈیٹا سٹور بھی ہو رہا ہوتا ہے،
تو ہمارے دماغ میں جو ڈیٹا سٹور ہو رہا ہوتا ہے وہ اس ٹائم پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے.
اور یہ کنسولیڈیٹ کا مطلب ہے یہ پکا ہو گیا،
پکا فکس ہو رہا ہوتا ہے،
فکس ہو گیا.
اوکے،
آپ نے اس میں ایک جیسے زیادہ کام کرنے کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس میں ایک آسان سا مثال یوں دے سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک فیکٹری ہے،
ٹھیک ہے،
فیکٹری کے اندر ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس ٹائمنگ پیریڈ میں کام ختم کر دیا، تو آپ کا ایک عملہ ہوتا ہے، اس عملے نے ایکسٹرا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کا جو پیسج ہے اس کو کلیئر کرنا شروع
کرنا شروع،
تاکہ آپ کا جو سامان کی ترسیل کا جو راستہ ہوتا ہے وہ کلیئر ہو جائے.
سپر اسٹور کی مثال دی جائے کہ دن بھر تو سامان جا رہا ہوتا ہے اور آ رہا ہوتا ہے، مختلف ترسیل چل رہی ہوتی ہے، لیکن جو رات کا عملہ ہوتا ہے وہ سپر اسٹور بند ہونے کے بعد اس انوینٹری کو فل فل کر رہا ہوتا ہے، جہاں پہ جو کمی ہوتی ہے اس کو،
کیونکہ جو سگنلز کا پیسج ہوتا ہے نا، وہاں کی صفائی جو ہے بیسیکلی وہ ریڈیکلز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اس کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں، تاکہ اب آپ نیچرلی دیکھیں جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو فریش فیل کرتے ہیں. یہ قدرتی چیز ہے، یہ ہر انسان فیل کرتا ہے. ایز کمپیئر ٹو رات کو سوتے ہوئے آپ بہت تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں،
اگر نیند پراپر ہوئی ہو،
نیند پراپر ہوئی ہوئی ہو تو آپ بہت زیادہ فریش. ایون اگر آپ فرض کریں گے جیسے کیلولا کی بات کرتے ہیں ہم، وہ بھی آدھے پون گھنٹے کا کیلولا ہوتا ہے عام طور پہ، تو آدھے پون گھنٹے کا آپ کیلولا صحیح طریقے سے لے کے اٹھتے ہیں تب بھی آپ کافی فریش محسوس ہو کرتے ہیں اپنے آپ کو. اس کی ریزنس یہی ہوتی ہے کہ آپ کا جتنا بھی انٹرنلی جو میکینزم ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور آپ کی ساری چیزوں کو ریفریش کر دیتا ہے، وہ سارے جو اندر کا میکینزم ہے اس کو ساری چیزیں ریفریش ہو جاتی ہیں، صفائی ہو جاتی ہے، مطلب ایک طرح سے آپ کو دوبارہ سے زیرو میٹر چیز ہو جاتی ہے،
تو
وہ دوبارہ سے اس نے ایکٹیولی کام کر دینا. دیٹس وائی اپنی اوور آل ڈیلی کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے जिनका खास तौर पे जहन का काम होता है, जहनी काम होता है, उनके लिए बहुत जरूरी है एक प्रॉपर टाइम की अच्छी नींद लेना, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
डॉक्टर साहब आजकल एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई शख्स 11 बजे भी जाके बिस्तर पर लेट जाता है सोने के लिए, उसके बावजूद नींद प्रॉपर नहीं आ रही होती। मतलब
तो
होता
हम
ये
बाद में आएंगे कि वो क्यों नहीं आ रही। अभी तो डॉक्टर साहब जो बयान कर रहे हैं ना, नींद जरूरी क्यों है, पहले ये समझ में आ जाएगा ना नींद इम्पोर्टेंट क्यों है।
नहीं इम्पोर्टेंट तो है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात हुई है कि चले इसको बाद में
अभी
कंटिन्यू करते हैं।
पे हम यूं आते हैं, नींद क्यों खराब हो रही है?
जो नींद खराब हो रही है ना, जैसे अभी बात कर रहे हैं, उसके मुख्तलिफ रीजन है ना,
ठीक है,
रीजन को
अलामते हैं, कौन कौन सी वजूहत
है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल आदमी है ना उसकी नींद कभी भी खराब नहीं होती है। अगर उसकी नींद डिस्टर्ब है तो कुछ और इश्यूज
वजूहत, उन वजूहत पे हम
वजूहत को देखना पड़ेगा, क्या रीजंस है। इम्पोर्टेंस हमें पता होना चाहिए, जैसे खाने की इम्पोर्टेंस हमें पता है, पीने की हमें इम्पोर्टेंस पता है, हर चीज की हमें इम्पोर्टेंस पता है, इसी तरह नींद की हमें इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। एक बड़ी तादाद है उनको सिर्फ एक रूटीन की चीज है कि यार रात को सो जाना है,
ठीक है,
ठीक है ना,
इससे रात को नहीं सो जाना है, वो सोना भी डिले सो जाना है, स्लीप की टाइमिंग भी बहुत
एग्जैक्टली
प्रॉपर ना हो।
फिलहाल तो हम एक वक्त का तय करते हैं।
अच्छा इसमें अब ड्रॉबैक क्या होता है, अब हम इसके उसके इफेक्ट के ऊपर आ जाते हैं, अब डिजीज के ऊपर बाद में बात करते हैं। अगर फर्ज करें किसी नॉर्मल इंसान को नींद प्रॉपर नहीं लेता किसी भी रीजंस की वजह से, काम की ज्यादती की वजह से, किसी वजह से, उसका अल्टीमेटली बॉडी पे इफेक्ट क्या पड़ता है? बॉडी पे इफेक्ट यह पड़ता है कि जो आपके जो ब्रेन रिफ्रेश हो रहा होता है ना, वो रिफ्रेश कम हो जाता है,
ठीक है।
जब रिफ्रेशनेस कम हो जाती है तो आपकी डेली की जो परफॉर्मेंस है उसमें डेफिनेटली आपके फर्क आ जाता है। और उसके बाद जो आप नींद में आपके नए खलिये बनने का हिसाब किताब होता है, उनको ताकत तवानाई देने का हिसाब किताब होता है, वो भी कम हो जाता है। बाद स्टडीज में यह आया है कि जिनकी नींद कम होती है उनमें नॉन रिवर्सेबल के ऊपर जो है ना खलियों की डेथ भी हो जाती है।
अच्छा,
जिसकी वजह से वो कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी बीमारी वगैरह का सिलसिला होता है,
ठीक है,
वो इस किस्म की कहानियां शुरू हो जाती हैं, उसके अंदर भूलने की आदत पैदा हो जाती है, उसके अंदर और दूसरे मामला हो जाते हैं, जैसे बुजुर्गों के अंदर हम आप देखते हैं
ओल्ड एज के अंदर की वजह से
उनकी नींद कम होती है, उनकी मेमोरी भी बड़ी शॉर्ट हो जाती है, याद नहीं रहता उनको क्या होता है, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है नींद का उसके अंदर आता है। तो अगर आपने अपनी जहनी सलाहियत को बेहतर रखना है तो नींद एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले
करती है। शायद इन्फेंट्स और टॉडलर्स के अंदर जो है वो नींद ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि जहन की ग्रोथ
बच्चों के अंदर जो नींद 15 घंटे की है ना, उसके रीजन ये होता है कि सुबह के टाइम के ऊपर जो है, क्योंकि हमारे यहाँ फजर का वक्त है, हार्मोन बॉडी के अंदर से रिलीज्ड होता है,
ठीक है,
ग्रोथ हार्मोन जिसको एक मेन है ग्रोथ हार्मोन,
ठीक है,
बच्चों का कुदरती में हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सारा नेचुरल फिनोमिना जो बॉडी
का है।
नेचुरली एक बच्चे की सोना 1 साल से कम 15 घंटे है,
ठीक है,
वो जो इतने ज्यादा सोता है तो उसके जो ग्रोथ हार्मोन का मतलब है आपकी बॉडी किस तरह ग्रो करेगी, वो स्लीप होगा टाइम प्रॉपर होगा तो जैसे डॉक्टर साहब अभी बयान फरमा रहे थे आपकी बॉडी में किस तरह ग्रोथ आएगी, दिमाग में किस तरह फ्रेशनेस आएगी, वर्किंग कैपेसिटी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा अब ये दूसरा जो टॉपिक है आप जैसे ये हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से तो ये कि 40% पॉपुलेशन जो है वो इफेक्ट हो जाती है नींद से। अब यानी 40% आवाम साल में 1-2 एपिसोड होते हैं जो उसको बोलते हैं हम इंसोम्निया, सही है। इसके दो वेराइटी है, इसमें एक एक्यूट कहलाता है और दूसरा क्रॉनिक। अब इसमें ये टाइमिंग अगेन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट का मतलब हो गया जैसे 15 से 21 दिन अगर आपको नींद नहीं आ रही या नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो
प्रॉब्लम
रही
है
तो फिर आप इसको कंसीडर करेंगे कि हाँ मुझे नींद की
या
प्रॉब्लम।
आप कम नींद लेते हैं?
नहीं, एक फिलहाल अभी बाय डेफिनेशन मैं ये अर्ज कर दूं,
ठीक है,
21 दिन तक आप समझ लें कि अगर आपको ये मुस्तकिल कंप्लेन आ रही है तो आप इसको कंसिडर करेंगे मुझे नींद की प्रॉब्लम है। और अगर ये 21 दिन से बढ़ के कुछ महीने हो गई तो ये क्रॉनिक हो गया,
ठीक है,
अब ये जरूरत पड़ गई डॉक्टर की,
ठीक है,
तो वो डॉक्टर ही इसको फिर डायग्नोस करेगा। नींद के
क्रॉनिक को थोड़ा अगर डिफाइन करें,
क्रॉनिक का मतलब एक बीमारी जो शुरू चली ना उसका दौरानिया 3 मंथ तक हो गया,
ठीक है,
तो ये क्रॉनिक के डेफिनेशन में आ जाएगा,
ठीक है।
अच्छा डॉक्टर साहब ये नींद को डायग्नोस करने का कोई टेस्ट भी नहीं है?
कोई टेस्ट नहीं,
सही है, ईईजी होता है, पॉलीसोमनोग्राफी होती है, लेकिन वो कुछ
स्पेसिफाइड है ना,
कुछ खास पेशेंट्स के अंदर होती है,
स्पेसिफाइड होता
है। इसमें मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, ये समझाना भी चाह रहा हूँ कि बहुत कंसेप्ट यहाँ मौजूद है कि मुझे नींद नहीं आती, ये डॉक्टर साहब को भी पता होगा, पेशेंट आगे खुद बोलते हैं मुझे नींद नहीं आती। नींद नहीं आता, आप खुद डायग्नोस नहीं कर सकते पहली बात, और इसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट भी नहीं है
ठीक है
कि मैं ब्लड टेस्ट करा लूं या एक्सरे करा लूं या अल्ट्रासाउंड करा लूं या दिमाग का
मैं
एमआरआई
भी
भी
टेस्ट
करा
करवा
लूं,
लूं ठीक
तो
है ठीक
कंफर्म नहीं होगा कि भाई आपको नींद की प्रॉब्लम है या नहीं है।
है
ये तो आपकी हिस्ट्री टेकिंग से डॉक्टर कंसल्टेंट ही डायग्नोस कर
डायग्नोस
पाएगा।
कर पाएगा।
अब आ गया सवाल, एक अक्यूट हो गया फिर क्रोनिक हो गया, फिर आगे इसके ट्रीटमेंट पे भी डॉक्टर साहब इस पे कर दूं कि आजकल आम बहुत प्रैक्टिस है कि जैसे ही एक दिन दो दिन नींद नहीं, हम ज्यादा कोशिश इस पे ये करेंगे, ये बहुत मार्केट के अंदर फैली हुई चीज है कि नींद नहीं आती, नींद नहीं आ रही,
नहीं आ रही
नींद ना आना भी इसकी वजूहात पे हम आएंगे, किन वजूहात पे की वजह से
जी
नींद नहीं आ रही,
बिल्कुल
हम खुद से कंप्लेन ना करें। आप जैसे कि अपनी सेल्फ अज्यूम कर लें, जैसे 21 दिन तक डॉक्टर साहब हमने देख लिया कि नींद नहीं आ रही, अब हम डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं, तो इसमें जीपी से रुजू करवाएं या फिर कंसल्टेंट से रुजू करवाएं?
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तरीकेकार तो यही है कि जो आपके इलाके के आपके फैमिली डॉक्टर्स जो होते हैं उनके पास जाएं,
नीचे फैमिली डॉक्टर के पास
फैमिली
चले जाए,
डॉक्टर्स के
बस
पास जाएं, अपने तमाम
हर
मसाइल
डॉक्टर भी
को
नींद से रिलेटेड में स्किल्ड नहीं होता।
नहीं होता बिल्कुल होता, लेकिन आपने फर्स्ट प्रायोरिटी आपने अपने फैमिली फिजिशियन से करनी है, उससे शेयर करनी है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना है, वो उसको देखेगा कि वाकई आप उस लेवल पे हैं या नहीं है कि आपको कंसल्टेंट तक रेफर किया जाए। वो वहां से एक तरह से कहते हैं फिल्टर करेगा आपको,
सही
तो फिल्टर करेगा, अगर वो समझेगा कि हाँ आपको कंसल्टेंट की नीड है, आपको ऐसे न्यूरोलॉजिस्ट की
फर्दर
जरूरत है, तो वो आपको आपको रेफर कर देगा। लेकिन अगर वो समझेगा कि नहीं फॉर द टाइम बिंग आपके साथ ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करके ये दवा देकर सॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो मुमकिन है वो
तो डॉक्टर
मसला
साहब
वहीं
मुझे
खत्म हो जाए
ये
ठीक
ही चीज रोकनी है।
है ना। अब
ठीक
मसला
है,
देखें, अगर आपने डायरेक्टली स्पेशलिस्ट के पास ही भेजना है मरीज को, तो वो तो उसके लिए आजमाइश वाली बात हो जाती है कि आपको पता है आजकल की, अगर आज कल के
अवल तो
सिनेरियो पे
मैं
अगर हम गौर करते हैं
डिस्कशन में यूं लेके आया हूं कि ना जीपी तक जाया जाता है ना कंसल्टेंट तक जाया जाता है,
एग्जैक्टली देखिए डॉक्टर तक पहुंचाना
ये
जरूरी
मेडिसिन
है, वो
बहुत आराम से अवेलेबल है,
मेडिकल
अगर
स्टोर से
नॉर्मली
लेके
मेडिकल पर जाके नींद की
जी
शिकायत करके नींद की गोलियां ले ली जाती हैं,
बस
या
इसके
जहनी
ऊपर
सुकून
ही
की कोई
मैं आ
गोली
रहा
ले ली जाती
हूं
है।
कि
उमूमी तौर पे ऐसे ही
इसके
होता
नुकसान
है, ऐसे ही होता है कि वो इस किस्म के अद्वियात वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो जाती तौर पे खुद से अद्वियात किसी भी किस्म की ना इस्तेमाल करें इलाके में आपके। देखें सिंपल सी बात ये है कि पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, पीछे
ठीक है
कॉन्सेप्ट ये होता है मेडिकल स्टोर से दवा लेने का, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक अपना टाइम बचाना,
टाइम बचाना, पैसे
दूसरा अपने पैसे बचाना, ठीक है
बचाना,
ना। टाइम तो चलो आपने बचा लिया, पैसे आप नहीं बचा रहे,
मजीद
आप
खर्च
मजीद
कर रहे हैं।
एक्स्ट्रा पैसे
लेकिन
दे
सर
रहे
ये
हैं,
जो मेडिसिन है ना, एक तो बहुत वैरायटी की है,
एग्जैक्टली ठीक
एक फिर ये कुछ अभी शुरू में मिलना शुरू हो जाती है, फिर ये बंद भी हो जाती है, फिर ये ब्लैक में भी मिलना
अच्छा,
शुरू। इस पे
इनटेक भी
मैं
बढ़ जाता
सलमान भाई
है।
एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको मैं इसमें एक स्टेटिस्टिक्स में देख रहा था कि इनिशियली जब ये इस किस्म की अद्वियात लॉन्च की गई मार्केट के अंदर, आज से अगर 10-12 साल पुरानी बात देखते हैं, तो वो सिलेक्टेड कंपनीज थी जो इस किस्म की अद्वियात बनाया
जी
करती
जी
थी,
जी
और वो माहाना मतलब 9 महीने में भी मुश्किल से वो खपत पूरी करती थी।
ठीक है,
नौ और 2-3 महीने ऐसे होते थे कि शॉर्ट चल रहे
शॉर्ट
होते
चल
थे,
रहे होते
अब उससे तकरीबन समझ लीजिए कि 4 से 5 गुना ज्यादा कंपनीज उस चीज को प्रोड्यूस कर रही हैं, उन चीजों को प्रोड्यूस कर रही हैं,
ठीक
बना
है
रही हैं, लेकिन स्टिल वो खपत पूरी नहीं हो रही है।
ठीक
अब
है, मतलब
मार्केट की
रिक्वायरमेंट इतनी
स्टैटिस्टिक
इंक्रीज
रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, और उसकी रीजन ये है। देखिए अब इसके सिनेरियो में ये बता रहा था कि फिलहाल आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है इसमें एक चीज जो नजर आ रही है वो दो तीन चीजें हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो यूज करते हैं,
यूज कर
डिवाइसेस
बिल्कुल
वगैरह
मैं
यूज
इसी
करते
तरफ
हैं,
आने का
नींद
कोशिश
का
कर रही
बहुत
हूँ।
बड़ा अमल दखल होता है
इसमें तो हम
इसका,
अभी आ रहे हैं ना, जैसे कि वो
हम दो
कौन
कॉल्स
सी
ले लेते हैं, उसके
वजूहत
बाद
है,
हम इस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक जो डॉक्टर साहब ने निशानदेही की
अभी
है,
वजूहत पे आ रहे
इट
हैं।
इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स,
एग्जैक्टली
ठीक है ना। हम इंशाल्लाह कॉल लेते हैं, दो कॉल्स दीजिएगा।
सर, मेरी शादी को 2 मंथ हो चुके हैं, तो मेरे पेट में हर्निया है, तो इसका कोई आसान सा हल या कोई मेडिसिन वगैरह बता दें।
ठीक है, इंशाल्लाह आज करते हैं। नेक्स्ट कॉल।
मेरा नाम खुबाब है, कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा मसला दरअसल ये है कि ना रात को बहुत देर तक नींद नहीं आती, फिर सुबह देर से उठता हूँ, और फिर दोपहर में मतलब शाम में मतलब बहुत गुनगुनी रहती है, नींद आती रहती है, उसके बावजूद फिर भी रात को ना लेट ही नींद आती है, तो इसके बारे में जरा जो भी इसका मतलब हाल है वो बता दीजिएगा।
इंशाल्लाह सर आपको बताते हैं।
सर ये कॉलर ने जो वो जो कॉल किया ये क्लासिक कंप्लेन है,
मेजर कंप्लेन ही
क्लासिक कंप्लेन। देखें आपका इसमें जो रिकमेंडेड स्लीप की नींद की जो गाइडलाइन है, आप जिस वक्त सोएं उसको एक परमानेंट वक्त
वक्त बना लें,
इसी वक्त सोना है और इसी वक्त
उठना
उठना
है,
इसके बाद जाके ये आपका स्लीप साइकिल सही होगा।
शुरू में शायद थोड़ा प्रॉब्लम आएगा,
शुरू में प्रॉब्लम आएगा। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजी बॉडी की ये है, जब भी नॉर्मल फिजियोलॉजी से हटके आप कोई काम करेंगे वो चीज आपके अंदर बीमारी बनना
बीमारी हो जाएगी,
उसको पैथोलॉजी बोल देते हैं। तो अगर जिस टाइम पे आपको सोना है वो टाइम अपने सोने का फिक्स कर लें कि 8 बजे 10 बजे या 11 बजे मैं सो रहा हूँ।
शेख तरीकत अमीर अल्लाह सुन्नत ने फरमाया है कि 2 घंटे इशा के 2 घंटे बाद सोने की आदत डालें,
इशा की नमाज।
नॉर्मली ये ट्रेंड है नहीं कराची में, बिलखुसूस शहरी इलाके जिनको कहा जाता है
सर, इसीलिए इन शहरी इलाकों की वजह के लिए तो हम यहाँ अभी आपको सब अर्ज कर रहे हैं कि मेडिसिन भी यही बिक रही है।
बिल्कुल यही बिक रही है, सबसे ज्यादा
यही ब्लैक में भी मिलती है। इसके
मतलब इसके लिए मरीज को खुद थोड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि वो 10 बजे जाके बिस्तर पे लेट जाए, भले आपको नींद ना आए शुरू में लेकिन आप जाकर लेट जाए, कोशिश करें दुरूद पाक पढ़े।
अभी जैसे इस कॉल इन कॉलर ने बताया कि मैं देर से सोता हूँ, तो ऑब्वियसली वो देर से उठेगा। सोने का देखें टाइम 6 से 7 8 घंटे ही,
8 घंटे ही है,
तो दिमाग ने तो उतना टाइम लेने ही लेना। अगर आप 4 बजे सोएंगे तो ऑब्वियसली आप वो फिर रात दोपहर 12 बजे
उठेंगे
तो उतनी लेवल की फ्रेशनेस नहीं मिलेगी
मिलेगी।
एक सेकेंडली ये होगा कि फिर आपकी काम करने की सलाहियत खराब होने लगेगी।
बिल्कुल दिन और ये मेरे ख्याल में डेबिट होता रहता है
जी।
मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आज नींद पूरी नहीं की, कल पूरी कर ली, फिर एक दिन बाद वही मेरी ड्यूटी ऑल्टरनेट चल रही है, लेकिन ये जिस दिन मैंने नींद पूरी नहीं की वो डेबिट हो जाता है। मतलब वो उसका नेमुल बदल नहीं,
नेमुल बदल नहीं होगा उसका, बिल्कुल नहीं होगा
उसका नेमुल बदल नहीं है,
उसका नेमुल बदल नहीं होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके अंदर ऐसे ही होता है कि जैसे फर्ज करेंगे हमारी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है 6 to 8 आवर्स हमने इसको नींद लेना है हर हाल के अंदर, लेकिन और फिर वो एक नॉर्मल फिनोमेना है कि आपने इतनी नींद लेनी है तो आपकी ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है बॉडी की वो प्रॉपरली एक्टिवली काम करेगी, उसके अंदर तमाम के तमाम फंक्शंस प्रॉपरली काम करेंगे। लेकिन जब आप वो चीज काम नहीं कर पाते हैं, चाहे 6 से 8 घंटे प्रॉपरली नींद नहीं ले पाते हैं, तो फिर होगा क्या कि वो आपका डेफिसिट आ गया। आपका 1 घंटे का फर्ज करें 5 घंटे नींद ली तो आपका डेफिसिट आ गया।
बिल्कुल
अब 1 घंटे रोजाना के हिसाब से 7 घंटे हफ्ते में आपने नींद कम कर दी,
कम कर दी
7 घंटे के हिसाब से महीने में आप कैलकुलेशन करें तो कितना बन गया 210।
कई लोगों ने ये फॉर्मूला किया हुआ होता है कि पूरा हफ्ता नींद जो है वो डिस्टर्ब रहती है और संडे वाले दिन जिन का होता है मैंने सोना है,
ये एग्जैक्टली गलत है।
बिल्कुल
ये उस चीज मतलब वो फायदा नहीं होता आदमी को, मतलब जो फायदा लेना चाहता है ना वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट
ये भी होता है कि आज मैं पूरी नींद पूरी करूंगा अपनी,
वो नहीं होता, कुछ एडवांटेज नहीं मिलता। हाँ वक्ती तौर पर ये कि वो थोड़ा सा उसको साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ जाता है कि यार आज मैंने 8 घंटे नींद
मैं आज,
लेकिन अब बॉडी के ऊपर देखते ना तो बॉडी पे उसको खातिर का इफेक्ट नहीं हो पाता है। जो आप एक नॉर्मल रूटीन के हिसाब से 6 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है। अच्छा नींद की वजह से बॉडी पे इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, बेइंतहा होते हैं और बहुत सारी बड़ी और मुझी बीमारियों से आप उसमें बचत भी हो सकती है।
जैसे डॉक्टर साहब अभी बोल रहे हैं ना, अभी यही मैं इत्तेफाक से इसे दे ही देख रहा था, कार्डियोवास्कुलर
exactly.
जो बीमारियां है ना
बड़ी बीमारियां
प्रेशर
दिल की बीमारियां और
ये इससे आपकी बचत होती है, रिलैक्सेशन आता है, पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम आपका नींद में एक्टिवेट होता है।
कुछ अर्से पहले मैं एक बेसिकली रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक मुल्क का बहुत यंग एज सीईओ, मतलब उनका कोई रिकॉर्ड था कि वो एक सबसे यंग सीईओ हैं कंपनी का, बड़े सक्सेसफुल थे वो साहब, तो उनकी एक सडन डेथ हो गई। तो डॉक्टर्स जो उनके थे वो बड़े हैरान थे क्योंकि उनकी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर होती थी, वो बड़ा पीरियडिकली अपने आप को जो है ना वो मेंटेन रखते थे और एक्सरसाइज करना बाकायदा, अपना टाइमिंग बड़ी शेड्यूल रखना। तो लास्ट फाइंडिंग ये आई कि वो सिर्फ दिन में 3 घंटे सोते थे, शेड्यूल इतना बिजी था, उन्होंने अपने टारगेट्स इतने हाई कर लिए थे कि उनको अचीव करने के लिए उन्होंने नींद को नजरअंदाज किया।
सही,
तो आखिर में पता ये चला कि उनकी नींद पूरी ना होने की वजह से उनकी जो डेथ हुई है और उसकी वजह ही उनके ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आया और उनके दिल को
सडन कार्डियक डेथ अरेस्ट कराता है।
बिल्कुल
देखें इसमें ये रूल आउट करना में मुश्किल है कि नींद वजह ही थी या मेन कार्डियक इशू था, बट वो उन्होंने अगर हो गया तो ये इशू है,
ये एक वजह कह सकते हैं,
एक वजह कन्फर्मेटिव नहीं,
कन्फर्मेटिव नहीं है।
आप जैसे यूं करें जो कुदरत का निजाम बना हुआ है, सर्दियां होती हैं मगरिब से लेके फजर का दौरानिया बढ़ जाता है
कुदरती तौर पर,
दैट मीन और सर्दियों के अंदर हार्मोन थायराइड हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है, नींद को एनहांस करता है, वो इम्प्रूव्ड होती है नींद, मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। गर्मियों में मगरिब और फजर का वक्त कम हो जाता है तो इसका मतलब है गर्मियों में नींद का टाइम आपका कम हो जाता है। तो हमको इसी तरह चलना है, नॉर्मल फिजियोलॉजी बॉडी बनी हुई इसी हिसाब से,
ठीक है,
सर्दियों में ऑटोमेटिकली नींद थोड़ी इम्प्रूव्ड होती है, गर्मियों में ऑटोमेटिकली थोड़ी रिड्यूस हो जाती है।
ठीक है,
तो ये चीजें पहले समझनी है। अब नींद खराब होना किन वजूहात पे शुरू होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने एक चीज बताई कि हमारे कमरे के अंदर जहाँ पे हम सो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें आपकी लैपटॉप भी शामिल है, आईपैड भी शामिल है, मोबाइल भी शामिल है, एलसीडी टीवी की स्क्रीन भी शामिल है। अब जैसे शुरू की एक फिजियोलॉजी जो मैंने अर्ज की थी ना डॉक्टर साहब के, दिमाग हमारा जो है सेंसर लगा हुआ है आंखों में, समझ
में सेंसर लगा हुआ बिल्कुल।
वंस अगर अब अंधेरा होगा तो मेरे दिमाग को पता कैसे चलेगा कि अंधेरा हो गया?
अंधेरा हो गया
बिल्कुल। भाई सेंसर है रेटिना के अंदर, वो जब लाइट शट ऑफ होगी, लाइट बंद होगी,
बंद होगी
तो वो हार्मोन रेस्ड होगा, तो फिर पता चलता है दिमाग वहाँ अब ये रिलैक्स।
ये तो रूटीन है कि रात में देर तक गैजेट्स का इस्तेमाल और लाइट्स बंद और बेड पे लेट के जी वो रोशनी बताया था।
तो देखें हम फिर अगेन आप नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब कर रहे हैं, भले आपने अंधेरा किया हुआ लेकिन मोबाइल यूज कर रहे हैं,
मोबाइल यूज कर रहे हैं
और फिर वो एक्स्ट्रा आपकी आंखों के ऊपर रोशनी और फिर उसके अपने अपने नुकसान।
बहुत सारे असरात हो सकते हैं। एक तो साइड ये हो गई कि आपको वो रोशनी डिस्टर्ब कर रही है, दूसरी जो चीज है वो ये है कि आपका दिमाग कंटिन्यू, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसके अंदर या आपके ऑफिशियल मैसेजेस आ रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली आपके जहन भी चल रहा है
जी,
मतलब वो फिक्र भी कर रहा है, सोच भी रहा है, सुबह की प्लानिंग भी कर रहा है। अगर अल्लाह ना करे कोई बुरी खबर आ जाती है तो वो आपके जहन के लिए सबसे ज्यादा नुकसान दे।
उठ के बैठ जाएंगे आप,
उठ के बैठ जाएंगे रात भर आपकी
नहीं। वो तो एक दिन बुरी खबर आई ना, रोज तो बुरी खबर नहीं आती ना,
लेकिन रोज काम तो मुस्तकिल कर रहा है ना आदमी।
लेकिन जी
मतलब सोने से पहले बिल्कुल, जिसको कहा जाए ना कि सोने से पहले जिक्र और अज़कार बंदा करे, यहाँ ये हालत है कि लोग सोने से पहले बिल्कुल मोबाइल यूज कर रहे होते हैं और लास्ट बिल्कुल व्हाट्सएप
जो
बंद करके
एक
सोने जाए।
सिलसिले में हमने वो जो वायरल इन्फेक्शन वगैरह पे किया था ना, CDC की रिपोर्ट आखिरी आई थी वायरल इन्फेक्शन में, क्या बाहर खाने से पहले अब हाथ धो ले,
हाथ धो ले,
सही है। इसी तरह स्लीप एसोसिएशन की भी एक फाइंडिंग है, इसमें रिकमेंडेशन ये दी हुई है कि आप सोने से पहले ना आप शावर ले, वार्म शावर ले लें।
ठीक है,
अच्छा सही है। वार्म शावर का मतलब क्या, अपने हाथ पैर मुंह हाथ धो लें,
धो ले।
हमारे मदनी माहौल में रिकमेंडेड क्या है, आप वजू करके सोए
बिल्कुल
सही।
ठीक है,
तो ये आप चीजें जो हम पहले से सुनते रहे इन चीजों को हम फॉलो करेंगे
करें।
तो अब जैसे वजू के अंदर भी डॉक्टर साहब आप मजीद इस पर तवज्जो दे दीजिएगा, रिकमेंडेड स्लीप फाउंडेशन के ये आई है कि अगर आपको नींद की प्रॉब्लम आती है तो आप वार्म शावर लें, उसके बाद आप रिलैक्स होके सोए। उफ पानी से कोई रिलैक्सेशन तो खैर ऑब्वियसली होती ही है, लेकिन अब ये अब जाके रिकमेंडेशन आ रही है, हमें तो कब से मिली बावजू सोना
बावजू।
देखिए बात वही आती है ना कि अगर हमारी कोई भी चीज शरीयत में जो चीज का हुक्म दिया गया है
उसको फॉलो करते
हैं, इंसानी जिस्म पे
के हिसाब से,
इंसान के निसाब पे सारी चीजों पे असर पड़ता है उसको, और वो फेवरेबल चीजें होती हैं इंसानी बॉडी के लिए, इंसान के लिए फायदेमंद होती हैं। हमें वो बताया कि फायदा नजर नहीं आता है, लेकिन जब तक साइंटिफिकली प्रूफ नहीं आता
हम नहीं मानते,
मुतमईन नहीं होती है।
दीन फितरत,
एग्जैक्टली
दीन फितरत कहा ही इसलिए गया है कि इस पे जो अमल है वो आपकी फितरत के मुताबिक है, आपकी बॉडी की नीड है,
बिल्कुल
चीज है बिल्कुल।
इसमें अब जैसे अमीर अली सुन्नत ने जो बात की है ईशा से दो घंटे बाद सोने की, अगर आप उस पर भी गौर करें तो उस पर भी बहुत बड़ी लॉजिक है,
लॉजिक है
कि आप 6 से 8 घंटे आपकी नींद पूरी हो रही है फजर की नमाज,
फजर की नमाज।
आप ये गौर करें कि अगर आप गर्मियों सर्दियों में सो रहे हैं 9 बजे तो फजर की नमाज के लिए आपको टाइम थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, 7 घंटे 8 घंटे मिल रहा है।
ताजुद की भी तरकीब, ताजुद की भी,
कई लोग तो सोते ही फजर के बाद है।
देखिए वो इसमें ये है कि जिन लोगों का लाइफस्टाइल अलग है,
ठीक है, वो बन चुका है,
वो लाइफस्टाइल पे कलाम नहीं मैं कर रहा,
ठीक है,
कि जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी हैबिट है जो बॉडी के हिसाब से,
मतलब आपकी बॉडी इसके अंदर कंफर्ट में आ गई,
फजर वाली आवाम कितनी होगी,
कम,
बहुत कम। अरे कि रात भर क्या काम कर रहे होते हैं,
अब काम पे बड़ा इन्हेसार है,
सही ना,
कि वो काम क्या कर रहे हैं।
जैसे आप जैसे जॉब शिफ्ट जिनकी जॉब ही रात की है तो उनके लिए तो एक्सेप्शन है
सही है, क्योंकि उनकी तो बॉडी फिर आधी हो गई है ना उस निजाम की,
वो भी डिस्टर्ब बेचारे होते रहते हैं, जेट लैग के इश्यूज आते हैं, जो किसी ने ट्रेवल कर लिया, जॉब स्विच हो गई, जो स्केड्यूल जो क्या क्या
दिन में प्रॉपर आराम दे नींद ना मिलना,
शिफ्ट वर्कर्स जो होते हैं जिनकी शिफ्ट बदलती रहती है,
शिफ्ट वाइज होते हैं, नाइट में जॉब करते हैं, उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो होते हैं।
4 कॉल्स हमारे पास, हम कॉल्स लेते हैं फिर इंशाल्लाह आपकी गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं जी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سگے عطار محمد فاروق عطاری ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں. میرا مدنی کلینک میں سوال یہ تھا کہ مجھے بہت زیادہ نیند آتی ہے, میں ہر وقت زیادہ وقت میں سونے میں گزار دیتا ہوں, پھر بھی وہ نیند کا خمار نہیں جاتا, تو اس کا کوئی علاج بتا دیجیے.
جی سیکنڈ کال دیجیے گا.
حضور عبد الوحید عطاری چشمہ سے عرض کر رہا ہوں, کم سے کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ نیند پوری کر سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے, نیکسٹ تھرڈ کال دیجیے گا.
محمد علی عمیر پنجاب کے شہر سے. میں رات کو نا تو 2-3 بجے سوتا ہوں, صبح اٹھتا ہوں تو نیند نہیں پوری ہوتی 12 بجے تک.
ٹھیک ہے, فورتھ کال ہے.
میرا نام عادل ہے, فابو مردینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میں 11 بجے بھی لے رہا ہوں تو میرے کو 2 بجے تک نیند نہیں آتی, اس کے متعلق کچھ ایسا بیان فرمائیں کہ مجھے نیند بھی آ جائے.
دیکھیے شاہ روبھائی, اس سے پہلے جو کال تھی, ابھی 3 کال کالز ہوئی ہو گئی ہیں جس میں ہم ابھی کلام
کر رہے ہیں.
سب کی یہی ڈاکٹر صاحب کمپلین آ رہی ہے کہ ہم سوتے ہی دیتے ہیں, تو اوبیسلی
ایک الگ آئی ہے کہ زیادہ نیند آتی ہے,
تو پھر سوال جواب لیتے ہیں نا.
اس میں جو پہلی کال ہے کہ ان کو زیادہ نیند آتی ہے, اب اس کی ریزنز دیکھنی پڑیں گی کہ کیا ریزنز ہیں.
یہ نارکولیپسی والا ہے نا.
ہاں ریزنز ہوں گے اس کی کوئی نہ کوئی, تو وہ ڈائگنوسٹک فیس میں چلے جائے گا کیا ریزنس ہیں. بہت ساری ڈیزیز ایسی ہوتی ہے جس کے اندر یہ پرابلم,
جسم کے اندر سستی اور یہ معاملات ہوتے ہیں.
کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ یہ چیزوں کو چیک کروانا پڑتا ہے. یہ اگر ان کو زیادہ واقعی پرابلم ہے کہ رات کو ایک پراپر نیند نہیں آ رہی, 2-3 گھنٹے کے بعد بالکل ایسے فریش ہو کے اٹھ جاتے ہیں اور پراپر نیند نہیں آتی, یا پھر اور کوئی مسائل ہوتے ہیں, تو
یہ تو
رابطہ کر کے پراپر ٹریٹمنٹ کرا لیا جائے. ان میں ایک پیتھولوجیکل کوئی پرابلم نظر آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیتھولوجیکل ریزن ہو,
بہتر یہ کہ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے.
زیادہ نیند والے,
زیادہ
نیند والے, اگر 8 گھنٹے سو گئے اٹھ کے بعد 11-12 بجے,
یہ تو ایک آ گئی کیفیت ہے نا آپ کی کہ دن بھر سست رہنا, تو یہ زیادہ
سست رہنا الگ, اب یہ سو جانا الگ. سو جانا بائی ڈیفینیشن
سستی کی وجہ سے نیند تاری ہوتی ہوگی
سر. سنیں سستی ہے تو مطلب وہ جاگ تو رہا ہے لیکن سو نہیں رہا,
صحیح ہے,
سستی الگ ہوگی.
تو ماحول ان کا ایسا ہے کہ وہ وہاں سونے کا ماحول بن رہا ہے ان کا, جیسے مثال
نہیں سر, بھلے ایک سونے کا ماحول بن رہا ہو, اصل ڈائگنوسس کرائیٹیریا میں یہ اس وقت آ جائیں گے جیسے اگر 8 گھنٹے سو گئے, پھر 3-4 گھنٹے اٹھے رہنے کے بعد نیند آ نہیں رہی ہے, بس سو گئے,
کیفیت
کنفرم سو گئے.
بھائی بات وہی ہے کہ ایک آدمی 8 گھنٹے سو کے اٹھ کے جا رہا ہے, اپنے کام پہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کام پہ بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ رہی ہے, وہاں سونے کا تو ماحول نہیں ہے اس کا,
صحیح ہے,
لیکن اس کو نیند آ رہی ہے بہت شدت سے نیند آ رہی ہے.
یہ
تو وہ پیتھولوجیکل کی طرف
ریفلیکس, جیسے نا میں اسی پہ آ رہا تھا, کچھ نا ریفلیکس بنے ہوئے ہوتے ہیں, کام بورنگ لگ رہا ہوتا ہے, بلڈ شوگر لو ہو رہی ہوتی ہے, بلڈ پریشر لو ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کو تھوڑا رول آؤٹ کریں. اب یہ بول دینا نا ڈائریکٹلی, اب جیسے آپ کنسلٹ آپ ڈاکٹر کو یہ بول دیں گے, یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب مجھے نیند آ جاتی ہے پھر دوبارہ, اگر آپ 8 گھنٹے سونے کے بعد دوبارہ کنفرم سو گئے تو یہ پھر آپ کنسیڈر کیا جائے گا, ہاں واقعی میں یہ مریض ہے یا مرض ہو چکا ہے نیند سے ریلیٹڈ.
ہاں
اگر سستی آ رہی ہے تو یہ ہو رہا ہے, تو اس میں بلڈ پریشر بلڈ شوگر یہ ذرا چیک.
اچھا سستی میں بھی ایک ڈیوریشن یہ دیکھ لیں کہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ صبح کی جو ڈیوٹی پہ جو لوگ جاتے ہیں عموماً دوپہر کا کھانا وانا کھاتے ہیں, تو عموماً نیچرلی قدرتی بات ہے اس وقت ایک ٹائم پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں باڈی میں سستی پن آتا ہے کھانا وانا کھا کے, تو وہ ایک الگ چیز ہے, اس کو کنسیڈر نہ کریں کہ اس کی وجہ سے کوئی خدا نہ خاصہ بیماری ہو گئی ہے. لیکن اگر اس سے ہٹ کے جیسے فرض کریں گے صبح 8 بجے ڈیوٹی پہ پہنچا ہے, 10 بجے اس کو نیند آنا شروع ہو گئی اور اتنی شدید نیند آنا شروع ہو گئی کہ اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا, ٹیبل پہ بیٹھنا مشکل ہو گیا.
یہ سچویشن نارملی ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے جو پوری رات نہیں سوتے.
ہاں جی,
تو وہ دن بھر ان کی کیفیت ہے, وہ اگر 6 بجے بھی سو کے 12 بجے بھی اٹھیں گے نا تو دن بھر ڈسٹرب ہی رہیں گے وہ.
دیکھیں سر وہی اگین ہم بار بار اسی پہ آئیں گے, اور جب آپ اپنی نارمل فیسیولوجی روٹین ڈسٹرب کریں گے آپ کی لائف.
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نارملی, جیسے ہم نے اقسام کی بات کی نا کہ وہ رات کو کر کیا رہا ہے, اگر وہ دین کی خدمت کر رہا ہے,
یہ تو ایکسیپشن ہے سر,
اسی کام میں مصروف ہے, دینی کام میں مصروف ہے, تو وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. لیکن ایک تعداد ہے جو ساری رات بیٹھ کے ٹی وی دیکھتی ہے, ساری رات بیٹھ کے موبائل یوز کرتی ہے, ساری رات بیٹھ کے
ایک پیشنٹ
گیمز کھیلتی ہے.
پیشنٹ آیا تھا اسی حوالے سے, ینگ ایج ڈاکٹر صاحب 18 سے 19 سال کا, وہ سائیکوسس پہ چلے گیا تھا, تو اس کی ہسٹری وہ اچھا خاصا اچھی فیملی سے بلانگ کرتا تھا, بہت علاج بھی ہوا, वो डिटेल हिस्ट्री लेके जो निकली तो पता ये चला कि 12-12 घंटे रात में वो गेम का इस्तेमाल करता था
जी।
रात में जो शुरू होते थे तो वो दोपहर तक गेम मुस्तकिल और ये कंटिन्यूस हैबिचुअल हो चुका था। ये जाग जाग के गेम खेल खेल के स्कूल की पहले परफॉर्मेंस खराब हुई।
ये आजकल ट्रेंड बना हुआ है उम्मीद तौर पे देखा जाए, छोटे क्या बड़े क्या सभी इसके अंदर तकरीबन कोई कम मिकदार में इन्वॉल्व हुआ है, कुछ ज्यादा मिकदार में इन्वॉल्व हुआ है। इसमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बड़ी सेंसिबल तरीके से आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके बच्चों की बॉडी पे, उनकी परफॉर्मेंस
पे, सब पे। पेरेंट कंट्रोल बहुत लाजमी
बहुत जरूरी
है। के नाजरीन, बच्चा जब छोटा होता है ना तो उमूमी तौर पे ये रूटीन है और देखा गया है, आपको भी नजर आता होगा, हो सकता है आप खुद भी इन्वॉल्व हो। अपने बच्चे को मतलब बहलाने के लिए मोबाइल दे देते हैं और मोबाइल में गेम्स इंस्टॉल किए होते हैं, बच्चा गेम्स में मशगूल हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चा अपने काम में लग गया, हमारी जान छूट गई है। लेकिन आप यकीन करें कि ये प्रॉब्लम कंटिन्यूस हो जाएगा, ये उसकी हैबिट बन जाएगी। फिर हमने यहां तक देखा है, एक रिसर्च भी है कि बच्चे नफसियाती तौर पे चिड़चिड़ेपन का भी शिकार होते हैं।
इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर।
सर आपकी टर्म इतनी बड़ी होती है कि
मैं ये टर्म इसीलिए
याद करने के लिए भी
याद उन्हें कराना नहीं है, बताने का मकसद ये होता है कि ये जेन्युइन टर्मिनोलॉजीज हैं, ये एग्जिस्ट करती है मार्केट। जैसे आपने एक थ्योरी में बात बोली कि कोई दिमागी मर्ज होता है तो उसका मर्ज का नाम भी है बकायदा, तो मैंने नाम बता दिया,
दाम बता दिया। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो परवरिश है, हमारा जो तरबियत है, उसका अंदाज जब तक मुस्बत नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, हमारी जनरेशन में ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो सबसे पहले पेरेंटल कंट्रोल, माँ बाप जब तक अपने बच्चों की इन आदत पे कंट्रोल नहीं करेंगे। नॉर्मली बच्चों को टीवी के आगे बिठा दिया जाता है अपनी जान छुड़ाने के लिए, कार्टून्स में सारा दिन बच्चे लगाते हैं, गेम्स में बच्चे सारा दिन लगाते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, ग्रोथ डिस्टर्ब होती है, फिर हम सब्स्टिट्यूट्स की तरफ जाते हैं, फिर हम उनको जो है वो टॉनिक्स दे रहे होते हैं
जी।
फिर हम डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं कि जी मेरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ ली, मेरा बच्चा जहीन नहीं है, सुस्त है। तो ये सारी वजूहत, इसकी बुनियाद जो है ना पेरेंट कंट्रोल है।
Exactly.
माँ बाप कंट्रोल नहीं करेंगे।
इसमें अभी आपने तस्कर किया ग्रोथ के हवाले से, शुरू में सलमान भाई ने भी ग्रोथ के हवाले से, ग्रोथ हार्मोन के हवाले से बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। देखिए एक चीज होती है, जब रात का पैटर्न सोने के लिए होता है, अल्लाह तआला ने महसूस किया है, और उसके अंदर वो उसके अल्टीमेटली हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा होता है। फिजियोलॉजी हमारी बहुत अच्छी होती है, जैसे सलमान भाई में हमारे ग्रोथ हार्मोन भी एक्टिवेट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि घर के अंदर उमूमन ये कहा जाता है कि रात को हमेशा ढीले कपड़े पहन के सोए,
लूज
कपड़े, रिलैक्स होकर सोए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपकी ग्रोथ हार्मोन्स में काम कर रहे होते हैं। आप फर्स्ट करें कोई टाइट जीन्स वगैरह पहन के, इस किस्म के लोग
नौजवानों का तो
आपने बड़ा टॉपिक रेस किया है।
चार कॉल्स हैं, कॉल्स ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं।
इसको यहीं से आप ले लीजिएगा,
आप यहीं स्टार्ट लीजिएगा जी।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मेरा नाम मोहम्मद वासिफ है। क्या हम फजर की नमाज पढ़ के उसी वक्त सो सकते हैं?
इंशाल्लाह जवाब देते हैं। नेक्स्ट कॉल।
इस सिलसिले से ये मालूमात करनी थी कि रात को नींद नहीं आ रही होती है और अजीब अजीब ख्याल आ रहे होते हैं, सर में दर्द रह रहा होता है।
ठीक है,
हालत तारीख गुजरने से बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ब्रेन फोग क्या होता है और इसका इलाज कैसे होता है, इसके बारे में मालूमात दीजिएगा।
ठीक है, ब्रेन फोग,
ब्रेन फोग
मतलब दिमाग पर धुंध, फोग तो धुंध को कहते हैं ना जी।
चले
फोर्थ कॉल।
अब्दुल वहीद तारी चश्मा से अर्ज कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से अर्ज करना था, क्या नींद के ड्यूरेशन को, यानी नींद के जो औकात होते हैं उनको कम भी किया जा सकता है?
ठीक है, फर्स्ट कॉल ये थी कि
फजर
के बाद, देखें जो तरीकेकार डॉक्टर साहब, फजर के बाद फौरन सोना तो वैसे भी मुनासिब नहीं है। अगर आप फजर के बाद जो है वो जिक्र असगार करें और तिलावत कुरान पाक करें, कुरान पाक की तफसीर पढ़ें और उसके साथ जो है शजरा शरीफ पढ़ें और फिर उसके बाद आप चाशो इशराक पढ़ के सोएं, तो इंशाल्लाह जल्द आपके रिस्क में भी बरकत होगी।
भी क्यों, जिनका ऑफिस है,
जिनका ऑफिस है वो तो ऑब्वियसली नहीं सोएंगे,
काम करने जाए ना।
लेकिन
इसमें क्लियर ये करने वाली बात थी कि इनका रात भर काम करके फजर की नमाज पढ़ के सोने की बात कर रहे हैं या फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठने के बाद होने की बात कर रहे हैं?
ये चीज,
ये क्वेश्चन है बड़ा।
मैं इनका मकसद यही होगा शायद, मुझे लग रहा है
असल में ये मदनी मुन्ने लग रहे थे, मुझे बच्चे लग रहे थे। तो नॉर्मली होता ये है कि बच्चों के भी पेपर्स
टाइम
हुए तो वो छुट्टियां भी हो जाती हैं, तो उसमें ये होता है नॉर्मली अगर वो फजर के लिए उठे तो फजर के बाद फिर वो सोएंगे, ही जाहिर सी बात है। तो हो सकता है कि ये केस
तो फिर सबके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं, बच्चों में भी बड़ों में भी, जो जदवल है अपनी चार शिशा की नमाज,
चार शिशा की नमाज पढ़ के उसमें इंशाल्लाह।
हाँ, लेकिन उसमें ये है कि ये है कि वो एक टाइम पीरियड बना लें, अगर सोना है आपने एक डेढ़ घंटे का। वन लोग ये करते हैं कि फजर की नमाज पढ़ी सो गए, सारी रात भी सोते रहे, फजर की नमाज के बाद हो गए तो फिर जोहर में उठ रहे हैं। ये पैटर्न नहीं होना चाहिए कि आपने फजर की नमाज पढ़ी, जो भी जिक्र अज़कार करने के बाद, आपने चार शिशा पढ़ने के बाद आप आराम करें, एक डेढ़ घंटा दो घंटे आप सो जाएं भले जाए, अगर आप फारिग हैं तो
सही,
और अगर फारिग नहीं है तो उसके बाद अपनी तैयारी करें, ऑफिस वगैरह की, स्कूल वगैरह की तैयारी करें आप।
अच्छा, फ्रेश हो गए। रिकमेंडेड तो ये है कि फजर के बाद आपकी अगर रूटीन ऐसी है कि आपके काम के औकात का दिन के ही है, तो आप फजर के बाद जिक्र अस्कार करें और सोए ना, फिर अपने काम पे जाएं। जब शाम को आप आएंगे तो ऑब्वियसली मगरिब के बाद आपकी बैटरी जो है वो डाउन होना शुरू।
मैं तो इसमें शरब ये रिकमेंड करता हूँ, जो भी पेशेंट मरीज होते हैं, जो एक्टिविटी आप रात में कर रहे हैं ना, जैसे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो काम वाले जो लोग हैं, कंप्यूटर का काम या इनका, ये जो मार्केट के अक्सर जो लोग होते हैं।
अच्छा, एक सवाल
इसको आप
डायरेक्टर साहब ने भी किया है, और शायद कॉलर का भी एक सवाल था कि पूरे दिन में 24 घंटे में 7 घंटे नींद अगर रज्यूम कर लेते हैं कि ये उनके लिए जरूरी है, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि इसको वक्फों से ले लें, या कंटिन्यू 7 घंटे या 6 घंटे 8 घंटे सोना लाजमी है?
देखें, ये कुदरत का निजाम है कि रात आराम के लिए,
आराम के लिए,
साहब इसमें डिस्टर्बेंस ना की।
देखिए, इसमें एक पॉइंट वाली चीज जो शुरू में आपने रेज की थी, अंधेरा होना बहुत जरूरी है
अच्छी नींद के लिए,
अच्छी नींद के लिए, आपकी अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी नींद के लिए। नेचुरली बात है, जब रात को रिकमेंडेशन किया है तो अगर आपने बेहतरीन फवायद लेने हैं नींद के, जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो आपकी बेस्ट यही है कि रात
के। लेकिन कुदरत ने एक निजाम क्रिएट किया है, और आपके सेंसर जो काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, तो वो अंधेरा होने के बाद काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुदरत ने जो निजाम आपको दिया है रात, तो ये रात ऑब्वियसली सोने के लिए दी गई है, और इसका निमुल बदल नहीं है,
बिल्कुल नहीं।
फिर दिन में आपको सब्स्टिट्यूट की तरफ जाना पड़ेगा, ऑल्टरनेट करना पड़ेगा, कमरे में अंधेरा करना पड़ेगा, बिल्कुल उस हिसाब से अगर वैसी नींद आपको चाहिए।
अच्छा, मिलनी भी नहीं है दिन के अंदर,
शोर शराबा
अगर आपने अंधेरा कर लिया तो चारों तरफ की आवाजें भी बहुत ज्यादा होती हैं, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर सोते भी नहीं है।
अच्छा, कुछ कॉल इसमें से डॉक्टर साहब इसमें ये थी कि कम वक्त में क्या हम उतना सो सकते हैं, या नींद
कम वक्त में ज्यादा,
कभी भी ऐसा
मुमकिन नहीं है।
तो मतलब 6 से 7 घंटे जो स्टैंडर्ड है वो,
मतलब ये तो ऐसी मिसाल हो गई कि
कम वक्त में मैं ज्यादा काम कर लूँ,
ज्यादा कम वक्त में काम कर लूँ, या मैं 2 साल में जो है वो मैट्रिक कर लूँ,
तो बस ये
मतलब तालीम जल्दी हासिल कर लूँ, कोई बात हो गई सारी क्रॉस कर लूँ।
एक नहीं होता, कॉलर थे जो जेन्युइन कॉलर है, मेरे हिसाब से जेन्युइन से मुराद इनका भी मसला है, जो डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं, रात को नींद नहीं आती, ख्यालात आते हैं और सर में दर्द होता है, और ये ओल्ड एज पेशेंट है। देखिए, ये क्लासिक सिम्टम आ गए इंसोम्निया के, एक तो एज भी ज्यादा है, नींद भी नहीं आ रही, और ख्यालात भी आ रहे हैं, और नींद ना आने की वजह से ये फ्रंटल हेडेक, जो बैंड लेग हेडेक
कहलाता
है, टेंशन हेडेक कहलाता
है, टेंशन भी हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम्स।
तो देखें, अब ये डॉक्टर साहब अभी इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, सोने से पहले क्या चीजें करी जाएं, जो अब जैसे डॉक्टर साहब कैफीन का इस्तेमाल, ये अक्सर लोग जो है चाय पी लेते हैं
सोने से पहले,
कैफीन नींद उड़ाती है,
सोने से पहले की एहतियातें जो हैं वो
अभी अल्लाह आखिर में तस्करा कर देंगे।
कुछ लोग तो कहते हैं चाय पीने के बाद ही नींद आती है,
अक्सर लोग ये कहते हैं,
हाँ बिल्कुल,
यार मुझे नींद ही
चाय पीने के बाद आती है।
अभी देखें, एनर्जी ड्रिंक,
कहीं ऐसा तो नहीं कि चाय पीने के बाद जहन को सुकून मिलता हो, तो सुकून की कैफियत में उसको नींद अच्छी आती
है, बताता हूँ मैं भी। देखें, एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कैफीन, चाय, कॉफी, ये सब मना है उन लोगों के लिए जो सफर कर रहे हैं नींद के मार
की प्रॉब्लम की वजह से।
सही है, जिसको नींद आ रही है ये चाय पी के भी तो सो जाए, उसको
सबसे बेहतरीन तो ये है कि डॉक्टर साहब ने जो ये बताया, और एक आजमूदा नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, नहीं एज अ प्रोफेशनल भी मैं बताता हूँ कि प्रोफेशन है और काम अपने हिसाब से होता है। मुझे भी ये प्रॉब्लम हुआ था नींद का पिछले दिनों, तो मैंने एक सेल्फ एक्सपीरियंस की बुनियाद पर एक तजर्बा करके देखा कि जब मेरा सोने का वक्त है, मिसाल के तौर पर मैं 11 बजे सो जाता हूँ नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं तकरीबन 10 बजे से अपने मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ देता हूँ। उमूमी तौर पर मैं ये करता हूँ कि जैसे अगले दिन छुट्टी नहीं है और काम है, तो मैं 10 बजे, अगर मुझे 11 बजे सोना है तो मैं 10 बजे अपना मोबाइल का इंटरनेट बंद करके रख देता हूँ, और वो एक घंटा मैं थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारता हूँ, तो मुझे मेंटली तौर पे जो है वो थोड़ा रेस्ट मिलता है, थोड़ा मेरी तवज्जो बढ़ती है काम से, और फिर 11 बजे मुझे बड़ी बेहतरीन नींद आ जाती है, और यही अगर मुझे 12 बजे सोना है तो मैं 11 बजे ही अमल कर लूंगा।
सही
कॉल्स हमारे पास, हम ये ले लेते हैं फिर हम इंशाल्लाह कंक्लूजन की तरफ आते हैं।
मैं मुल्तान से मोहम्मद इकबाल बात कर रहा हूँ। मुझे शुगर है और फोड़े निकल आते हैं, मैं इस बारे में डॉक्टर साहब आए हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ।
ठीक है, दो कॉल थी सर।
साहब ये इनके फोड़े का डायबिटिक पेशेंट है, जख्म है इनके, थोड़े तवज्जो दे दें।
देखिए इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ इनको ये है कि अगर ये डायबिटिक पेशेंट है, डायग्नोस्ड केस है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनका शुगर कंट्रोल में है या नहीं है, प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं या नहीं लेते हैं।
सही,
एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज ये है। और अगर फोड़े या कोई स्किन डिजीज इनको प्रॉपरली हो रही तो डायबिटिक को भी पेशेंट
हो जाती है,
वुमन स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है। आया ये डायबिटीज से रिलेटेड स्किन प्रॉब्लम है इनको, या कोई अलग कोई ऑक्यूपेशनल रिलेटेड कोई इनको स्किन प्रॉब्लम है, ये इनको रूल आउट करवाना पड़ेगा कि आया इनको कोई काम वाम ऐसा है इस किस्म का है कि जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम हो रही है, किसी ऐसे एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या इटसेल्फ डायबिटीज की वजह से या शुगर की वजह से इनको स्किन डिजीज हो रही है कोई, तो इसके लिए जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनसे ये रब्ता कर लें, उसको डायग्नोज कर लें, तशखीस करवा लें कि किस रीजन की वजह से, उस रीजन को लुक आफ्टर करेंगे इनका मसले का हल।
साहब एक चीज उनकी उसके लिए रहनुमा के लिए अर्ज कर दूं कि जो शुगर के मरीज में जख्म वगैरह हो जाते हैं इनको थोड़ा सा अपनी केयर ज्यादा रखनी होगी।
बिल्कुल,
जैसे नॉर्मल बंदे का जख्म अगर 3 से 4 दिन में अगर हील हो जाता है यानी ठीक हो जाता है, डायबिटीज के मरीज में वो 10 से 15 दिन ले लेता है, तो यानी जो हम उनको फिर केयर जरा ज्यादा करनी होगी
इसमें। बस ये एक मंडी चैनल के नाजरीन जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जो शुगर के मरीज है उनका जख्म ठीक नहीं होता है, या बाद होकर ये जी मेरे को शुगर है मैं ऑपरेशन कैसे करवाऊं ये करवाऊं, तो उनके लिए अर्ज ये है कि क्या डायबिटिक पेशेंट्स का ऑपरेशन नहीं होते?
होता है, होता है,
सबके होते हैं ऑपरेशन। एक प्रोटोकॉल होता है हॉस्पिटल का, उस प्रोटोकॉल के तहत उसको तय किया जाता है, उनकी शुगर को कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद जाके वो ऑपरेट की तरफ चाहते हैं।
काफी तकलीफ दे मतलब कि शुगर के अंदर वैसे इंसान का निजाम और फिर फोड़े हो जाना, अल्लाह ताला इनको शिफाए कामिला आजिला नाफिया अता फरमाए,
और बार बार हो रहे हैं ना इस वजह से।
ये है कि शुगर पे खास तौर पे ध्यान दें कि शुगर की अद्वियात प्रॉपर तरीके से जिस तरह इनको बताई गई है डॉक्टर साहब
उस हिसाब से
उस तरीके से लें, प्रॉपर विजिट करें।
ठीक है,
देखा यह जाता है कि सालों साल विजिट नहीं करते हैं डॉक्टरों के साथ और महीनों हो जाते हैं अपना ब्लड शुगर को क्रॉस चेक कराए,
क्रॉस चेक करवाए
क्या चल क्या रहा है, फॉलोअप करना बहुत जरूरी होता है।
हर 6 महीने में गालिबन अगर मैं हर 6 महीने में अमीर सुन्नत का मदरी
कुछ टेस्ट
अमीर सुन्नत ने तजवीज किए हैं तो वो टेस्ट जरूर करवा लें।
पेट का कुफले मदीने का किताब वो है, वो पढ़ते रहें,
वो पढ़ते रहें तो इंशाल्लाह मसाइल के हल आपको मिलते रहेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा शहर में कंक्लूजन पे आने से पहले जैसे मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, ये हाईलाइटेड हुए हैं
जी,
ये सारे वो हैं जो नींद, देखें नींद के जो क्लिनिकल साइड से जो एज डॉक्टर जो बताऊं मैं, 2 ही ट्रीटमेंट, एक फार्माकोलॉजिकल एक नॉन फार्माकोलॉजिकल।
ठीक है,
नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब ये हो गया बगैर दवा के इलाज।
ठीक है,
बगैर दवा के आज हकीम साहब तो है नहीं तो वो बता देते अपने को नुस्खा।
वैसे लोग ज्यादातर यही चाहते हैं कि बगैर दवा के इलाज हो जाए।
हाँ, तो उसका जो आप जो क्लिनिक साइड पे ना डॉक्टर साहब, साइकोथेरेपी, CBT, किसी के मर्ज को सुनना, उसके मसाइल को सुनना, पे अगर आप किसी टेंशन में परेशानी में है तो इसको रिजोल्व करें।
ठीक है,
इसको ठीक करें, और फिर आप अपने स्लीप के सोने के
टाइम की नियत से भी अगर किसी के मसले को सुन लिया जाए।
अब ये CBT तो हमारे फैजान मदीना में हफ्तावार सुनने तो बड़ा मदनी मुजाकरे, अब इनको पाबंदी के साथ सुने, इनमें ये CBT, ये CBT
सारी चीजें शामिल है,
और क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है।
देखिए
इसमें जैसे अभी हम तस्करा कर रहे थे कि नींद,
डॉक्टर साहब ये सोने से पहले आप जैसे आपने बताया ना, कपड़े किस तरह के पहनने, कमरा किस तरह का होना है और क्या क्या एहतियातें करनी है।
देखिए उसमें यही है कि जब आप
अक्सर ये ड्रेस का कंसेप्ट मैंने बहुत कम सुना है,
नहीं
आपने सही हाईलाइट,
नॉर्मली नौजवानों के अंदर प्रॉब्लम है कि वो पैंट पहन कर सोते हैं कि हमें नींद अच्छी आती है। अच्छा, नौजवानों के अंदर एक बड़ा मसला, कमरा भी बड़ा फैला हुआ होता है, अगर आस पास का माहौल भी साफ सुथरा होगा, ऑर्डर में होगा, तो ये भी मेरे ख्याल में बड़ा इफेक्ट करता होगा आपके सेंसेस को।
असल में मसला ये है कि साइकोलॉजिकली होता है कि कोई भी इंसान पैंट पहन के या जींस पहन के अगर सो रहा है तो एक शलवार कमीज पहनने वाला बंदा अगर सो रहा है तो उसको अपनी कमीज भी संभालनी है, उसने अपने कपड़ों को भी संभालना है, एक तरीके से रखना है, जीन्स में जिधर करवट मार ली उधर चले गए, वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वो अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा होता है जाहिरी तौर पे, लेकिन अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देख रहे होते हैं तो वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि आपने मसल्स को स्पाज्म किया हुआ होता है, जकड़ा हुआ होता है, एक टाइट जींस पहन रखी होती है।
हर माशरे में जरूरी नहीं है शलवार कमीज का ट्रेंड हो, पजामा वगैरह जो कहलाते हैं, जो
नाइट सूट
इजी रिलैक्स होते हैं वो आप
बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, वो बिल्कुल आपके पैंट के स्टाइल में होते हैं, रिलैक्स शूट होते हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिलखसूस जो ग्रोइंग स्टेज के बच्चे होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि उनको आप इस किस्म की चीजें फर्ज करेंगे, सातवीं आठवीं क्लास का या दसवीं क्लास का बच्चा है, नवीं क्लास का बच्चा है, वो टाइट जींस पैंट पहन के सो रहा है तो उसकी ग्रोथ पे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा।
वो जींस क्या पहनेंगे, जो कपड़े पहने हुए उसी में सो रहा है,
उसी में सो रहा है, एग्जैक्टली। तो वो ग्रोथ पे डेफिनेटली
तरबियत की बात आ गई, माँ बाप की तवज्जो की बात आ गई।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मकसद यही है ना कि
होने से पहले डॉक्टर साहब इसमें कपड़े चेंज करा दूं मैं,
चेंज
बिल्कुल कपड़े
चेंज
और फिर कुछ मुंह धोएं, साफ करें, क्या करें।
सोने से पहले का जो तरीकेकार है वो एक तो आपने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कपड़ों में लेकर आना है, वजू फरमाए, वजू करें,
परफेक्ट
आप पेस्ट करें, टूथपेस्ट करें, ओरल हाइजीन बहुत जरूरी है।
एक तरफ तवज्जो में दिला दूं, कई लोगों की जैसे कॉल आई कि मैं रात को देर तक सो रहा हूं तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि नमाज की फिगर मेरे ख्याल में अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अता फरमाए कि अगर नमाज की फिक्र आपको होगी ना कि मैंने फजर में उठना है तो ये फिक्र आपको इंशाल्लाह अज़्ज़वजल जो है ना वो जल्दी बिस्तर पे लेके जाएगी
इंशाल्लाह।
क्योंकि अगर फिक्र नहीं होगी, आपने उसको सिर्फ ज़िमनन लिया हुआ कि आँख खुल गई तो पढ़ लूंगा, तो फिर आप आराम से सोएंगे, देर से भी सोएंगे, रात भी जागेंगे। लेकिन अगर नमाज की फिक्र आपके जहन पे सवार होगी, खौफ खुदा होगा कि नमाज मैंने अदा करनी है, जिस तरह मैंने दोपहर का खाना खाना है, रात का खाना खाना है, नाश्ता करना है, अपने दीगर काम करना है, कि नमाज आपके जदवल में अगर पाबंदी से होगी तो इंशाल्लाह ये फिक्र आपको लेके सोएगी इंशाल्लाह।
देखें अब बात ये आप फिक्र वाली बात पे मैं आगे बात करता हूँ कि अगर आप दुनियावी पैटर्न को लेके चलते हैं तो हम जैसे मिसाल के तौर पर सुबह बॉस ने फोन कर दिया सुबह 6 बजे आपने आना है, टाइमिंग आपकी 9 बजे है लेकिन बॉस ने फोन कर दिया सुबह 6 बजे आपने आना है, तो आप बोलेंगे नहीं मैंने जल्दी सोना, भाई सुबह 6 बजे मेरे को बॉस ने बुलाया है जाके, तो उस
आप सारी परेशानियां ना
सब
साइड
हो जाती है,
सोचे भी सब साइड, ख्याल
मोबाइल भी साइड में हो जाएगा, लैपटॉप भी साइड में हो जाएगा, सब चीजें साइड पे हो जाएंगी, फिर आप जाके जो है ना
सो जाएंगे,
सोने की तैयारी करेंगे, यार मैंने 6 घंटे 5 घंटे 6 घंटे नींद पूरी करनी है, उसके बाद मैंने जाना है
जाना है।
अब यही सोच अगर आप नमाज के लिए
ताला की बारगाह में हाजिर हो गई तो
उससे कितना फायदा होगा, ज़हनी सुकून आपको फायदा होगा, आपको जिस्मानी फायदा होगा, आपको फिजिकली और पैथोलॉजिकली तमाम फवायद उससे हासिल होंगे।
मदीशा के नाज़रीन हमारे सिलसिले का वक्त भी खत्म हुआ जाता है, कंक्लूजन अगर किया जाए तो
मैं ऐड कर दूंगी आखिरी में वो चीज है जो नॉर्मल हैबिट में रूटीन के अंदर जो एक नॉर्मल आम बंदे की नींद खराब कर देती ना, लिस्ट थोड़ी सी बताता चलूं। जैसे सोने से पहले चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, इन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल सख्ती
ना करें,
नहीं करना। पान, गुटखा, छालिया, जो कुछ लोगों की हैबिट होती है पान खाने की, ये सारी चीजें कैफीनेटेड है,
ठीक है,
कैफीन निकोटीन बेस है, ये नींद को खराब
खराब करती है।
तो समझ लीजिए ये हेल्दी जो लोग हैं उनकी यहाँ से खराब होना शुरू
होती है।
तो यानी रात को यानी शाम के बाद इन चीजों का इस्तेमाल बंद कर देंगे या कम कर देंगे तो मुमकिन इंशाल्लाह आपका नींद का पैटर्न।
इसलिए कंट्रोल मदीसा के नाज़रीन, कंट्रोल और फिकर, अगर जहन पर फिकर लाहक होगी और जहन होगा अल्लाह तबारक ताला की इबादत का, नेकियों का, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन तमाम बुराइयों से बचने की कोशिश भी करेंगे और दीगर को भी इसकी दावत देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सिलसिला काफी फ्रूटफुल रहा होगा, हमने कोशिश की कि आप तक इस कलील वक्त में भरपूर मालूमात पहुंचा सकें, लेकिन हर सिलसिले का एक वक्त होता है और उस वक्त उसको इख्तिताम पजीर करना होता है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले सिलसिले में एक नए मौजू के साथ आपके पास हाजिर होंगे इंशाअल्लाह, और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर अंदाज में उसको डिस्कस कर सकें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
रसूले पाक की दुखिया